एषा रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कथयति प्रतिवेशी द्वयेन भारत चीन देशाभ्यां सह नेपाल सन्तुलितं तटस्थं च सम्बन्धं स्थापयितुम् अपेक्षते। भारतस्य जी न्यूज प्रसारण संस्थाया प्रधान सम्पादकाय सुधीर चौधरीले सोमवासरे प्रदत्तायं अन्तर्वार्तायं प्रधानमन्त्री ओली अभाषत विपुल देशद्वयस्य मध्ये अवस्थितेन नेपालेन द्वाभ्यमेव देशाभ्यां सह मित्रताया समानतायाश्च सम्बन्ध स्थाप्यमानो वर्तते। प्रधानमन्त्री ओली अवोचत भारत जनसंख्याया संरचनायाश्च आधारे नेपालात् विपुलतरो वर्तते। तत्रत्यः प्रधानमन्त्री वयसा ज्येष्ठस्य समवेत परम् राष्ट्रियताया जनताया सार्वभौमसत्तायाश्च कृते नेपालः कस्मात् विदेशात् स्वल्पतरो विपुलतरो वा नास्ति। असौ सार्वभौमसत्ता सम्पन्नस्य देशद्वयस्य प्रधानमन्त्रिणो स्थानं समानमस्तीति चर्चेन अब्रवीत्। तदनुरूपमेव सम्बन्धम् नेपाल भारतेन सह स्थापयन् अस्ति। प्रधानमन्त्री ओली एतत् उपनिवेशवादी युगम् नास्तीति व्याख्यान अवदत् इदं स्वाधीनताया पारस्परिक सम्मानस्य समानतायाश्च युगम् अस्तीति हेतु केनापि स्वल्प विपुलवैपरीत्येन समान रूपेण सहकार्य समन्वयाभ्याम् प्रविधेर विकसन पुरस्सरं राष्ट्र जनतरहिताय प्रवर्तितेन भाव्यम्। नेपाल भारत संयुक्त आयोगस्य षष्ठोपवेशे भागं ग्रहीतुं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली श्वः माघस्य प्रथमे दिवसे भारतस्य राजधानी नयाँ दिल्ली नगरं गन्ता। माघस्य प्रथम द्वितीय तृतीय दिवसेषु उपवेश भारतस्य नयाँ दिल्ली नगरे वस्ता। उपवेशे परराष्ट्रमन्त्रिणा गेवालिना नेपाल भारतयो द्विपक्षीय सम्बन्धेन सह व्यापार पारभनोर्ज सीमा सुरक्षा कोरोना संक्रमण सहकार्य सहयोग पूर्वाधार अन्तर्बद्धता निवेशन कृषि पर्यटन संस्कृति प्रवृत्ति विषयेषु विमृक्षते इति परराष्ट्र मन्त्रालयेन विज्ञप्तिं प्रकाश्य ज्ञापितं वर्तते। प्रतिनिधि सभाया विघटनस्य विरूद्धे सर्वोच्च न्यायालये पञ्जीकारितस्य आदेशाभियाचन निवेदनस्य श्रवणं सांविधानिक न्यायपीठे अद्य विधीयमानं वर्तते। अस्य विवादस्य श्रवणं सांविधानिक न्यायपीठे बृहत् पूर्ण न्यायपीठे वा विधेयमिति विवादो वर्तते। प्रतिनिधि सभाया विघटनस्य विरूद्धस्य त्रयोदशानाम् आदेशाभियाचन निवेदनान्मध्ये एकादश जने बृहत् पूर्ण न्यायपीठे अस्य विवादस्य श्रवणम् अभियाच्य अस्यैव पौषस्य द्वाविंशे दिवसे पूरक निवेदनानि पञ्जी कारितानि आसन्। सर्वोच्च न्यायालयेन प्रतिनिधि सभाया विघटनस्य पश्चात् मन्त्री परिषदि विहिता अतिरिक्त नियुक्ति परिवर्तनम् कार्यविभाजनम् च रोद्धम् आदेशम् अभियाच्य पञ्जीकारितस्य आदेशाभियाचन निवेदनस्य श्रवणम् विलोकनस्य क्रम एव आगामिनो माघस्य एकादश दिवसे विधास्यते। न्यायाधीशयो विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठस्य पुष्पलता माथेमा विधायाश्च संयुक्त न्यायपीठेन यः श्रवणस्य क्रमे समयाभावस्य कारणेन अपर श्रवणाय आगामिनो माघस्य एकादश दिवस निर्धारितोऽस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन विद्यालय शिक्षायां नूतन पाठ्यक्रम क्रियान्वयनस्य नेपाल सर्वकारीय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रस्य निर्णयस्य विरूद्धे पञ्जीकारितम् आदेशाभियाचन निवेदनम् निरस्तीकृतम् वर्तते। आदेशाभियाचन निवेदनस्य निरस्तीकरणेन सहैव एकादश्यां कक्षायां सामाजिकाध्ययन जीवनोपयोगी शिक्षाम् अस्मादेव शैक्षिक सत्रात् अध्यापयितु मार्ग प्रशस्तीभूतो वर्तते। न्यायाधीशस्य प्रकाश कुमार ढुङ्गाना विदेश एकल न्यायपीठेन ह्य आदेशाभियाचन निवेदनम् एतत् निरस्तीकृतम् वर्तते। गत विक्रम वर्ष विद्यालय शिक्षाया राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपस्य अनुसारेण नूतन पाठ्यक्रम क्रियान्वयनो वर्तते। नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापति शेरबहादुर देउवा कथयति न्यायालय विचाराधीन विषय नेपाली कांग्रेस दलम तटस्थम वर्तते। नेपाली कांग्रेस दलस्य क्रीडा विभागेन सिन्धुपाल्चोक जनपदस्य बाह्र विशेष स्थाने ह्य आयोजित कार्यक्रमे सभापति देउवा अवदत प्रतिनिधि सभाया विघटनस्य विषय न्यायालयस्य निर्णय नेपाली कांग्रेस दलाय स्वीकार्यो भविष्यति। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दलस्य केन्द्रीय सचिवालय सदस्य उप प्रधानमन्त्री च ईश्वर पोखरेल कथयति नेकपा दलम विभक्तम नास्ति। सर्लाही जनपदीयेन नेकपा दलेन मुख्यालय मलङ्गवस्थाने ह्य आयोजिताम सभाम सम्बोधयन् उप प्रधानमन्त्री पोखरेल प्रेस संगठन नेपालस्य सर्लाही शाखाया आयोजित पत्रकारै सम्मेलन कार्यक्रमे आत्मवि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम बोधयितुम् अभियानम् प्रारब्धम् वर्तते इत्यवदत्। गृहमन्त्रिणा रामबहादुर थापा विधेन आगामिनि वैशाख मासे सम्पत्समानाय निर्वाचनाय आवश्यक सुरक्षा योजनाम् निर्मातुम् सशस्त्र प्रहरी निर्दिष्टाः सन्ति। गृह मन्त्रालय आयोजित समारोह वरिष्ठ प्रहरी उपेक्षक पदा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदे पदोन्नीतेभ्य प्रहरी अधिकृतेभ्य वर्धापनम् शुभकामना सन्देशम् च प्रदत्त मन्त्री थापा निर्वाचनस्य पूर्व कार्येषु प्रवर्तनाय निरदिशत्। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङ पत्रकारिता व्यवसायम इतोपि मर्यादितम विधातुम अनुरोधे गत दिने काष्ठमण्डपी क्रियाशील दलित पत्रकार संघस्य प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन मन्त्री गुरूङ अतर्कयत द्वि तृतीयांश बहुमतस्य सर्वकार कार्य सम्पादनात् अवरुद्ध बन्दिनम विधातुम अपेक्षितम तदनु जनतायम गन्तुम विहितस्य निर्णयस्य सन्दर्भ पत्रकारे असंवैधानिक इति कथनम असत्यम वर्तते। मन्त्री गुरूङ अवदत मार्गे संचालन तोपि इदानीं निर्वाचनम अभियाचन्ते। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दलस्य दाहाल नेपाल समूहस्य अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भाषते सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयेन एव प्रतिनिधि सभाया पुनस्थापना भविष्यति। दलस्य गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ती मेलनम ह्य पोखरा स्थाने सम्बोधयन् अध्यक्ष दाहाल संविधानस्य उचितम व्याख्यानम पुनस्थापना च भविष्यता इत्यत्र आत्मवि विश्वस्तर स्थितम इत्यतः अस्मिन् विषये कार्यकर्तृन् विश्वस्ता भवितुम् अनुरोधत। पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल अवोचत सर्वोच्च न्यायालयेन संविधानस्य अक्षराणां भावनाय मर्मणस्य व्याख्या विधीयते स्वेच्छा संशोधनं कर्तुं न शक्यते। जनता समाजवादी दल नेपालस्य राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वदति वर्तमानाय राजनीतिक जटिलताय राष्ट्रं बहिरानेतुं सर्वासं लोकतान्त्रिक शक्तिनां ऐक्यबद्धता आवश्यकी वर्तते। पर्सा जनपदीयेन संघीय प्रेस फोरमद्वारा ह्यो वीरगंज स्थाने आयोजित पत्रकार सम्मेलने अध्यक्ष यादव संघीयता गणतन्त्र सदृशीनां प्राप्तोपलब्धीनां आपन्नस्य संकट उत्पन्नो स्थिति आरोपयत। नेपाली कांग्रेस दलस्य उपसभापति विमलेन्द्र निधि भाषते स्वतन्त्र न्यायपालिकाया प्रतिनिधि सभाया विघटनस्य सन्दर्भे प्रदास्यमानं निर्णयं पूर्ण सम्मानेन स्वीकृत्य दलम अग्रे वर्धिष्यते। नेपाल प्रेस युनियन संघस्य धनुषा शाखा यो जनकपुर धामनी आयोजित पत्रकार सम्मेलने उपसभापति निधि प्रतिनिधि सभाया विघटनम संविधान सम्मतम नास्ति तथापि लोकतन्त्रस्य सुन्दरतम पक्षाय निर्वाचनाय न्यायालयेन मार्ग प्रशस्ति कृते सति निर्वाचन गन्तुम दलम सर्वदा तत्परम स्थिति समस्पष्टयत। नेपाले ह्य अतिरिक्तेषु त्रिंशदधिक शतचतुष्टय जनेषु कोरोना संक्रमणं पुष्टीभूतं वर्तते। ह्य नवत्यधिक त्रिशतं कोरोना संक्रान्त जना स्वास्थ्य लाभं प्राप्नुवन् ह्यस्तनावधि प्रतिशतं षडुत्तर सप्तनवति संक्रान्त जना स्वास्थ्य लाभं लब्धवन्तः ह्य कोरोना संक्रान्ता पञ्चजना अम्रियन्त इति समाचारः।